तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता। तत्पश्चात श्रीमान टिडंडी पादगण वैष्णवगण वैष्णवीगण, आज सचमुच ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ जम्बू में 5 दिन का प्रोग्राम कर रहे हैं। यद्यपि हम लोगों का प्रोग्राम बहुत ठसाठस भरा है, तो अभी उसमें से हम लोगों ने समय निकाल कर मैंने कहा मुझे जरूर जाना है जम्बू में, इसलिए और जगहों का बात दे करके मैं जम्बू में आया। किस लिए आया? न साधु संग नहीं होने पर आदमी दुर्बल हो जाता है, भगवान के भजन में शिथिलता आ जाती है, पुनः जोश भरने के लिए और याद दिलाने के लिए जीवन का कर्तव्य एकमात्र भक्ति है। इसी को जब कलयुग प्रारंभ हो गया तो 60,000 ऋषि लोग नैमिषारण्य में पहुंचे। पहले तो यज्ञ कर रहे थे, किंतु कलयुग को आया जान करके बड़े भयभीत हो गए। धर्म कर्म मिटने सा जैसा हो जाएगा, स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो जाएंगी, पुरुष लोग भजन नहीं करेंगे, कामों में व्यस्त रहेंगे, अपना धर्म भूल जाएंगे। इसलिए सोनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से पूछा, सुत गोस्वामी जी, आपने अपने गुरु जी सुखदेव गोस्वामी से समस्त श्रुतियों के साथ वेदांत सूत्र, उसके अकृत्रिम भाष्य श्रीमद भागवत का आद्योपांत अध्ययन किया अपने गुरु जी से, और उनके कृपा से आप समस्त शास्त्रों के विशारद हैं, आप कृपा करके संक्षेप में बतलाइए कि मनुष्यों की आत्मा का कैसे कल्याण होगा, कैसे उनकी आत्मा सुप्रसन्न रहेगी। शरीर के लिए नहीं पूछा, हम शरीर नहीं है, ये तो हाड़ मांस रक्त पेशाब पैखाना की थैली है, इसके अंदर में जीवात्मा और परमात्मा है। जो मनुष्य जन्म लेकर और उनकी उपलब्धि नहीं करता कि हमारे अंदर में मैं हूं और भगवान कृष्ण है और दोनों में नित्य संबंध है, हम लोग उनके नित्य दास हैं, उनको भूल जाने से हमारी ये दुर्दशा हुई और कोटि कोटि जन्मों से आवागमन के चक्कर में रोग दुख त्रिताप से दग्ध होते चले आ रहे। इसलिए मनुष्य जन्म देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इस जन्म में भगवान का भजन किया जाए तब हो सके। तो उन्होंने कहा आत्मा सुप्रसन्न कैसे होगी, इसके उत्तर में उन्होंने कहा समय पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रदो खजे अहेतु कव्यवहिता जात्मा संप्रेषित। मनुष्य मात्र का ही नहीं, प्राणी मात्र का परम धर्म है। क्या धर्म है? भगवान जो अधोक्षच इंद्रियों से अतीत भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, उनके चरणों में अहेतुकी बिना किसी लौकिक कामना वासना के कृष्ण के सेवा के अतिरिक्त और कोई कामना वासना के द्वारा नहीं, और नित्य निरंतर तैल धारावत अविच्छिन्न गति से भगवान के चरणों में लगी रहने वाली हूँ, और कर्म ज्ञान इत्यादि के द्वारा ढके नहीं हुए। ये भक्ति ही परम धर्म है, इसी से आत्मा सुप्रसन्न हो सकती है, अन्यथा नहीं। श्री रूप गोस्वामी ने इसी को बतलाया और भी अच्छी तरह से, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकुलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। समझो जो भक्ति क्या है, प्रणाम करने से नहीं होगा। ठाकुर जी के दरबार में गए और चौकटे पकड़ करके दबाने लगे, ठाकुर जी हमारा लड़का पास हो जाएगा तो एक आने का पैसे का प्रसाद चढ़ाऊंगी, बताशा हमारे पति निरोग हो जाए। पति कहते हमारा कारोबार चल जाएगा तो हम कुछ ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ेंगे। ये भक्ति तक्ति नहीं है, भक्ति से कोई संबंध नहीं है। भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कुछ न मांगा जाए, और नित्य निरंतर लगी रहे। ज्ञान और कर्म से योग से ही भक्ति होती है, ऐसा बात नहीं। इसलिए तन मन और वचन की सारी चेष्टाएं, इसके अतिरिक्त भावना की जितनी चेष्टाएं हैं, कृष्ण के लिए ही हो, और वो भी हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हो। विशेष करके गुरु के अनुगत्य बिना नहीं हो सकता, वैष्णव के अनुगत्य, उनके अनुगत्य में हो तो ये उत्तमा भक्ति है। आरंभ होती है कहां से, सबसे निचले स्तर में इसको श्रद्धा कहते हैं। समझो जे श्रद्धा किसको कहते हैं, केवल प्रणाम करने से आदर करने से श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा उसको कहते हैं साधुओं का संग हो और उनके मुख से हरि कथा सुनकर कृष्ण की सेवा करने की वासना लालसा हृदय में जग जाए, ये श्रद्धा है। और उसका बाहरी लक्षण क्या है, गुरु शास्त्र और कृष्ण के वचनों में दृढ़ विश्वास हो। कृष्ण का भजन करने से हमारे सारे कर्म हो गए, ऐसा विश्वास जिसके हृदय में हो, ये पारमार्थ की श्रद्धा है। श्रद्धा होने के बाद भी चित्त भी स्थिर नहीं, तब श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि भगवान का गुणानुवाद करते 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 साधु गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अनर्थ दूर हो जाने पर वह नैष्ठ की भक्ति होती है। आगे पुनः श्रवण कीर्तन करने पर वह रुचि उत्पन्न होती है। रुचि उत्पन्न यदि भगवान के नाम लेने में, भगवान का भजन करने में, साधु गुरु वैष्णव की सेवा करने में, ठाकुर अर्चन में, ठाकुर की रसोई करने में, ठाकुर संबंधी किसी भी चीज में रुचि उत्पन्न हो गई, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। और यही रुचि परिपक्व होने के बाद में आसक्ति होती है, यही आसक्ति भी फिर और भी परिपक्व होने पर तब ये भाव होता है या रति। रति बड़ी दुर्लभ चीज है, साधारण चीज नहीं है। ये किसी ब्रजवासियों की सेवा के प्रति यदि लोभ उत्पन्न हो जाए रागानुगा भक्ति के द्वारा, तब उसका और कृष्ण का स्मरण करते करते उनके भाव जब हृदय में संक्रमित होते हैं आते हैं, वो शुद्ध सत्व कहलाता है, वही स्थायी भाव। और उस स्थायी भाव पर आलंबन उद्दीपन विषय आश्रय इत्यादि मिलने से रस भक्ति रस होता है, वही भक्ति रस शांत दास सात सख्य वात्सल्य और मधुर के रूप में होता है। और यही मधुर भाव भी दो रूप प्रकार, एक द्वारकापुरी में स्वकीय भाव और ब्रज में पारकीय भाव तो होता है। ये पारकीय भाव ही सबसे श्रेष्ठ शास्त्रों का प्रतिपाद्य, भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। ये भक्ति के तारतम्य में से भक्त भी पांच प्रकार के माने गए। एक शुद्ध भक्त, ज्ञानी भक्त, एक ज्ञानी होता है, एक ज्ञानी भक्त है समझो, जो भगवान का रूप नहीं मानता, गुण नहीं मानता, क्रिया नहीं मानते, वो निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं, वो भक्त नहीं है, बल्कि भगवान का निरादर करने से अधोपतित हो जाते हैं। और ज्ञानी भक्त प्रहलाद महाराज है, वो जानते हैं, देखते हैं भगवान में सारा विश्व है और समस्त प्राणी में हमारे इष्ट देव भगवान भी हैं। यह तत्व ज्ञान जिन में है वो ज्ञानी भक्त है। इनसे श्रेष्ठ शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज है, वह अपनी प्रहलाद महाराज के इष्ट देव को भूख नहीं लगती, चलने में थकते नहीं, प्यास लगती नहीं, इसलिए प्रहलाद महाराज जी क्या सेवा कर सकते हैं, कोई सेवा कर नहीं सकते। अम्बरीश महाराज जी यद्यपि सिद्ध भक्त नहीं है, जगत के हैं, तो भी भगवान के लिए हाथों से झाड़ू देते हैं मंदिर में, खुद राजा हो करके मन को कृष्ण के चिंतन में लगाते हैं, अपनी वाणी से भगवान की कथा बोलते हैं, कानों से भगवान की कथाएं सुनते हैं, सारी इंद्रियों को ही भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं, इसलिए श्रेष्ठ है। किंतु इनसे भी श्रेष्ठ कौन है? प्रेमी भक्त, जिनको प्रेम है, जैसे हनुमान जी दिन रात भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा छोड़ करके एक सेकेंड वो नहीं रह सकते, और जहां जहां भगवान की कथा होगी, राम की कथा होगी, वहां किसी न किसी रूप में, कोढ़ के रूप में भी सबसे पीछे आकर के बड़े ध्यान से सुनेंगे। और राम और सीता जी के बड़े प्रिय हैं, कैसी कैसी सेवाएं की हैं, अधिक दोहराने की बात नहीं। किंतु इनसे भी श्रेष्ठ ब्रज के सखा लोग हैं, उद्धव जी हैं, नहीं पांडव लोग, प्रेम पर पांडव लोग अर्जुन का रथ कृष्ण स्वयं हाँकते हैं, उनके घोड़ों का पैर दबाते हैं, अर्जुन कहते हैं कि ले चलो रथ बीच में, तो ले जाते हैं, अपनी बहन सुभद्रा जी के साथ ही कृष्ण के साथ में कर देते हैं, कृष्ण के सेवक बन जाते हैं, द्रौपदी को अपनी सखी मानते हैं, उनके प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं। किंतु ये लोगों से भी अर्जुन ने विश्व रूप देखा और देखते ही हाथ जोड़ दिए, प्रभु मैंने आपको सखा कहा है, मित्र कहा है, मैंने श्री कृष्ण कहा है, आप हमारे इस अपराध को क्षमा कीजिए, अब से ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए इनको कभी कभी भगवान का वो भाव उत्पन्न होता है मर्यादामयी, जिससे कि वो शुद्ध रूप से भक्ति प्रेम नहीं कर सकते। और इनसे भी भक्त उद्धव है, उनको कहते हैं प्रेमातुर भक्त, कृष्ण के अतिरिक्त तो रह नहीं सकते, कृष्ण उनके कृष्ण के वो मंत्री हैं, सखा है, सेवक है, बंधु है, भाई है, सब कुछ है। और वो उद्धव जी इतने बड़े भक्त होकर के ब्रज में जाते हैं, तो नंद बाबा जसोदा का प्रेम देख करके एकदम स्तब्ध हो जाते हैं, जिसकी कथा अभी आप लोग महाराज जी से सुन रही हैं। ब्रज में गए और नंद बाबा का देखा भाव, जसोदा मैया को देखा भाव, कृष्ण के बिना ब्रज में ये अंधे हो रहे हैं, आंखों के जल बंद नहीं होते अश्रु, यहां तक कि गायें घास नहीं चरती, बछड़े दूध नहीं पीते, कोयल अब कुहकती नहीं वृंदावन में, मयूर नृत्य नहीं करते, बड़ी विचित्र विरह युक्त वहां की दशा हो गई। और उसमें भी नंद बाबा से जसोदा मैया का विरह, क्योंकि कृष्ण के प्रति मैया जसोदा का नंद बाबा से भी अधिक प्रेम था, और उन लोगों से भी अधिक गोपियों का, उन गोपियों में भी सबसे अधिक श्रीमती राधिका जी का प्रेम, इसी को हम लोग क्रमशः इसमें बतलाएंगे। अभी श्रीमान तीर्थ महाराज बोल रहे थे, अपना विषय समाप्त कीजिए।
अभी अभी हम लोगों ने गुरु जी के मुखारविंद से एक साधक जीवन में साधक की स्थिति क्या होती है इस विषय पर श्रवण किया है। इस साधक जीवन में साधक तो बहुत प्रकार के होते हैं। कोई कर्मी याद कर रहा है, यज्ञ कर रहा है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, अमर बनने के। कोई ज्ञानी मुक्ति पाने के लिए साधना कर रहे हैं। योगी परमात्मा में लीन होने के लिए साधना कर रहे हैं। परंतु उनकी साधना सब अपनी अपनी चाह में, अपनी सुख की लालच में, कोई भगवान की सेवा नहीं करते। और भक्त क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते। देह सेवा के बिना कदापि मुक्ति नहीं चाहता। भगवान मुक्ति देने को तैयार, वे कहते हैं मैं देता हूं, परंतु भक्त लोग भी नहीं चाहते। वे प्रभु की सेवा चाहते। भक्तों का पहचान इसी पर है, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें कर्म का फल स्वर्ग में नहीं चाहिए, हमें योग सिद्धि नहीं। प्रभु का विरह हमें उदित हो और उनकी हम सेवा करें, उनके निकट में पहुंचे, सेवा के द्वारा उनको प्रसन्न करें। इसलिए देखिए अभी गुरु जी ने बताया कि ज्ञानी भक्त जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के चारों पुत्र, पहले वे ब्रह्म ज्ञानी रहे हैं, भगवान को निराकार निर्विशेष कहा करते। ब्रह्मा जी को बड़ी दया आई, इन बालकों की बुद्धि पलट जाए। एक दिन वैकुंठ लोक से बड़ा सुगंध प्रवाहित होता हुआ आ रहा था और सुगंध सूख कर बोले इतना सुगंध कहां से आ रहा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा बालकों प्यारे बच्चों ये सुगंध वैकुंठ धाम से आ रहा है, भगवान के दरबार से। तुम लोग जाना चाहते हो उनका दर्शन करके आओ जाओ। ब्रह्मा जी ने प्रेरणा दी, दोनों गए दर्शन करने। परंतु अब ज्ञानियों की क्या दशा होती है, सदा अहंकार में अभिमान में डूबे रहते हैं। वहां जबकि 6 दरवाजे को पार किया, 7वें दरवाजे पर पहुंचे, छोटे छोटे नंगे धड़ंगे बालक कहां से आ गए, भगवान का दर्शन कैसे करेंगे। तो उनने कुछ बोला नहीं, दो डंडे से ऐसे रोक लगाते ही बालक बिगड़ करके उनको अभिशाप कर दिया। बोले तुम लोग यहां रहने जो करेंगे, भगवान के दरबार में भी रोकथाम होता है क्या, जाओ मर्त लोग में जाकर के जन्म ग्रहण करो, यहां करेंगे। इतने में वे दोनों जब रोने लग गए, प्रभु से प्रार्थना करने लगे, तो भगवान श्रीहरि निकट में आ गए। आकर के उन ब्राह्मणों को सम्मान देते हुए कहा कि हमारा सेवक बन करके आपके प्रति अन्याय किया, अपराध किया, इसलिए इसे उचित दंड मिल गया। जो कोई व्यक्ति गायों को ब्राह्मणों को भोजन कराता है, जितने से कहीं अधिक मैं तृप्त होता हूं, तो आपके प्रति अनादर किया इसका उचित फल मिल गया। मेरा हाथ यदि कोई अन्याय करता तो हाथ को काटा होता। इस तरह से कहीं उनको दिखाते हुए अपने सेवकों को जय विजय को मानो डांट फटका लगा रहे हैं, ऐसे धमकी वाली बातें कही। तब वे हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करने लगे, अरे भगवान का दिव्य रूप, आज तो हम निराकार समझते आए हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं, और वैकुंठाधिपति भगवान नारायण दिव्य स्वरूप में चतुर्भुज रूप में, ये तो निराकार नहीं है, निर्विशेष नहीं है, भगवान सदा सर्वदा लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान। उनको निराकार कहना अत्यंत गलत होता है, तब उनका भूल भ्रांति दूर है। उस समय प्रभु के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लग गए, बोले कि प्रभु आपने तो हमें ठग लिया, अपने सेवकों के प्रति इतना अनुग्रह और हमारे लिए आपने कहा जो कोई व्यक्ति गायों को ब्राह्मणों को भोजन कराता है उससे मैं तृप्त होता हूं, तो ब्राह्मण क्या केवल खाने वाले हैं और वो भी गायों के समाज में गायों के साथ में ब्राह्मण को मिलाकर के बता दिए कि गाय वो और ब्राह्मण को खिलाने वाले, तो ब्राह्मण क्या खाने के लिए हुआ? प्रभु आपने अपने सेवक के प्रति जितना अनुग्रह किया इतना हमारे प्रति उनके प्रति अनुशासन करते हुए परम कृपा, हमने जो गलती की जो अन्याय किया इनको मैंने हम लोगों ने अभिशाप दे दिया, अब हमें क्षमा करें, परंतु इसका प्रतिकार तो नहीं है। यदि ये लोग असुर होकर के जन्म लें तो 3 जन्म में आ जाएंगे और भक्त बन करके आएंगे तो 7 जन्म लगेगा। तो उन लोगों ने तब चयन कर लिया कि हम असुर बन करके आएंगे और भगवान को वीर रस का आस्वादन करा करके हम जल्दी ही जल्दी जल्दी से जल्दी हम आ जाएंगे। तो ये तो भक्तों का काम रहा, जय विजय के अनुग्रह से ही जबकि चतुष्सेन को भगवान का साकार सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव हुआ तब ये ज्ञानी भक्त बने, उनके अंदर कुछ भक्ति भावना प्रकाशित हुई, भगवान के लीला माधुरी को आस्वादन करने लगे, केवल निराकार निर्विशेष ब्रह्म में लीन होंगे, हम मुक्त हो जाएंगे, हम ब्रह्म में लीन होंगे, भगवान को हम मिटा दें, निराकार निर्विशेष कह करके यह गलत धारणा है, अत्यंत भ्रांतिमूलक है। जैसे अपने बाप की निंदा करें, कोई गाली दे तिरस्कार करें तो उनका अपमान करें, ऐसे भगवान का अपमान किया जाता है, कभी भी ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करते। इसलिए भक्त भगवान को कभी निराकार नहीं वे तो साकार सच्चिदानंद स्वरूप में ही उनकी आराधना करते हैं, भक्ति पूर्वक अपने हृदय की भावना को समर्पण करते हैं। इस प्रकार ये सभी ज्ञानी भक्त हैं, परंतु इनके अंदर कोई सेवा की भावना नहीं आई, ये लोग भगवान की कोई सेवा नहीं कर सकते, परंतु सेवा की नजर में देखा जाए उससे भी कहीं अभी इस संसार के एक राजा हुए जिनका नाम अम्बरीश महाराज है, तो अम्बरीश महाराज ने राजा होकर के सप्तद्वीप वसुंधरा के अधिपति होकर के अपने हाथों से भगवान की सेवा की, भगवान के श्रीमूर्ति की सेवा पूजा दर्शन उनकी कथाओं का श्रवण जीवन से कीर्तन परिक्रमा वंदन अर्चन सभी कुछ करते रहे। इस प्रकार भगवान उनके भक्ति के अधीन बन गए। भगवान ने जो कि दुर्वासा ऋषि जैसे महाज्ञानी ज्ञानी पुरुष जो कि आए थे उनके दरबार में, बोले कि मैं भूखा प्यासा हूं मुझे खाने के लिए कुछ दो, बोले कि भोजन तैयार प्रसाद तैयार आप भोजन करो आसन में बैठे और भोजन, बोले कि मेरा स्नान नहीं हुआ इतने में चले गए स्नान करने को और इधर पारण का समय समाप्त होने जा रहा था, तो महाराज ने थोड़ा सा चारा भी मुंह में ले लिया, इस कारण दुर्वासा जी बिगड़ करके आए और अपनी जगह में से कुछ बारों को उखाड़ करके फेंक दी, बोले जा उसमें से देखते हुए एक राक्षसी निकली जलती हुई राक्षसी, बोले जाओ इस दुष्ट को जला डालो, उस समझ वो कृत्ता राक्षसी जैसे आगे बढ़ी इतने में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र वहां आया और चक्र आकर के उस राक्षसी को तो खत्म कर दिया समाप्त कर दिया, फिर ऋषि के पीछा करता हुआ दौड़ता रहा और दुर्वासा जी एक वर्ष तक त्रिलोकी में भ्रमण करते हुए उन्हें कहीं शरण नहीं मिला, अंत में ब्रह्मा जी के पास में गए शिव जी के पास में गए किसी ने भी रक्षा नहीं की, भगवान विष्णु के पास में जाकर के प्राय मधुसूदन कहते हुए गिर पड़े कि आप हमारी रक्षा करें, और भगवान ने क्या बताया, ये ब्राह्मण अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र साधु वीर ग्रस्त हृदय भक्त ईर भक्त जन प्रिय, मैं तो भक्तों का प्रिय हूँ मैं तो भक्तों का अधीन हूँ अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्तों का पराधीन, मेरी कोई स्वतंत्रता चलती नहीं, वे लोग मेरे हृदय को ले लिए, मैं उनके हृदय में बसा हुआ हूँ। और जिन्होंने घर बार पुत्र परिवार संसार की सारी आसक्ति मोह सब कुछ छोड़कर मेरे चरणों में एकांत रूप से आश्रय लिया, ये ब्राह्मण मैं ऐसे भक्तों को कैसे छोड़ सकता, तथापि मैं उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। इस प्रकार भगवान भक्त वत्सल हो करके भक्त अधिकता को दिखाया और ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, काटा जहां से गड़ती है वहीं से निकलती है, इसलिए काटा जहां से गड़ा वहीं से निकलेगा, अर्थात जहां तुम्हारी गड़बड़ी मची है वहीं पर जाओ। जबकि दुर्वासा जी इतने बड़े महायोगी महाज्ञानी अंग्रेजी के चरणों में आकर के धाम से गिर पड़े, साष्टांग होकर के प्रार्थना करने लगे, महाराज भी उनको प्रणाम करते हुए क्षमा मांगने लगे। उस समय बोले कि आप मुझे चक्र से बचाए, जब उन्होंने चक्र से प्रार्थना की तब चक्र वहां से हटके गया और उन्होंने दुर्वासा जी को भोजन कराया, विश्राम किए, तब वे शांत होकर के बोले कि आज मैंने भक्तों की महिमा की, भगवान भक्तों के लिए किसी को भी छोड़ते नहीं, चाहे कोई ज्ञानी हो, कोई योगी हो, कोई सिद्ध पुरुष हो, भगवान भक्त वत्सल, कोई कर्मी वत्सल, ज्ञानी वत्सल या योगी वत्सल हुए आज तक कभी नहीं सुना गया, न कभी किसी को भगवान ने दर्शन दिया, चाहे भक्त गृहस्थी हो और त्यागी हो, कहीं भी हो, भक्ति पूर्वक अपने हृदय की भावना प्रभु के चरणों में समर्पण किए हो, उनकी सेवा में संलग्न है, ऐसे भक्तों के भगवान अधीन बन जाते हैं, इसलिए ऐसे भक्तों के अधीन बने हैं। परंतु भगवान क्या करते हैं, प्रेमी जनों के जो विवश हैं, प्रेमी जनों के सामने अपने मधुर लीलाओं को प्रकट करते हैं। अभी आपने सुना है कि प्रेमी जन जैसे पांडव लोग हुए हैं, हनुमान जी हुए हैं, इन लोगों के सामने अपनी कैसी कैसी मधुर लीलाएं प्रकट की, और अर्जुन के रथ के साथी बन गए, एक साथ भोजन पान स्वयं सभी कुछ करते, हास्य परिहास क्योंकि एक साथ में उठना बैठना सभी कुछ, तो भी अर्जुन के मन में कुछ संभ्रम संकुच भाव रह जाता। जबकि कुरुक्षेत्र युद्ध में, युद्ध के समय में जब भगवान ने विराट विश्वरूप दिखला करके अर्जुन को उपदेश सुनाया था और विराट रूप दिखाया, तो उस विराट रूप को देखते ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, सकेति मत्ता प्रसवम यदुत्तम, हे कृष्ण सकेति मत्ता प्रसवम यदुत्तम, हे कृष्ण हे जादव हे सकेति, हे प्रभु मैंने आपको सखा जान करके हर्ष परिहास किया, कितने प्रकार के योग किया, परिहास किया, मजाक किया, हंसी धीरती की, आप हमें क्षमा करें, मैं आपके स्वरूप को समझ नहीं सका। इस तरह से क्षमा मांगते हुए उनके अंदर संभ्रम संकोच भाव आ जाता है। परंतु अभी अभी आपके सामने जैसे प्रस्तुत किया था कि देवकी और उधर में यशोदा मैया कि कृष्ण का जन्म हुआ है, ये एक प्रवाद है कि देवकी नंदन है, वास्तविक रूप से कृष्ण मां यशोदा के पुत्र है, इसका प्रमाण अभी अभी आपके सामने प्रस्तुत किया था कि ब्रजवासियों को किसी को भी कोई शक नहीं हुआ कि उनकी बालक जन्म हुआ तो माता का फेस लेकर, मां यशोदा के मुंह के फेस से ही कृष्ण का मूलता मिलता है, इसलिए कोई बालक माता के फेस लेकर के जन्म लेता है तो वो बड़ा सौभाग्यशाली होता है। जब यशोदा मैया के मुखमंडल का जैसा फेस और सौंदर्य और माधुर्य लेकर के कृष्ण ने जन्म लिया तो संदेह इस बात का, जबकि जन्म हुआ तो यशोदा मैया के कोख से जन्म लिए तब तुम नारी से जन्म हुआ है, नारी का था गया जब कर्म संस्कार हुआ, और संदेह किस बात का रहता है। केवल इतना ही नहीं, देवकी जहां यशोदा जी कृष्ण को भगवान कह करके हाथ जोड़ रहे हैं, दूर हटा रहे हैं, और आगे की बात भी अभी बताई थी, योगी देवकी और वसुदेव यह प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण हे बलराम आप दोनों भगवान हैं, साक्षात परम पुरुष परमेश्वर हैं, और आपसे यही मेरी प्रार्थना है, मेरे जो 6 पुत्र मारे गए हैं कंस ने मार दिया, आपने सांदीपनि के गुरु सांदीपनि के मृत बालक को लौटा दिया, तो मेरे उन बालकों को लौटा। अब क्या बात रही कि आप दोनों परमेश्वर हैं और मेरे मरे हुए बालकों को लौटा दे, उन जो मरे हुए बालक जो चले गए उनके प्रति मेरा मन का संबंध है कि उनके प्रति ममता आ रही है, और कृष्ण को भगवान कह करके दूर हटा रहे हैं कि आप भगवान हैं, उनको वास्तव से प्यार नहीं कर सकते। परंतु माँ यशोदा ने कभी ऐसे सोचा, चाहे गंगाचार्य ने कितनी बात कह दी हूं बालक पहले जन्म में कोई जन्म में ऐसे जन्म लिए हैं शुक्ल रक्त और पीत वर्ण में, इस समय आपके बालक श्याम वर्ण में आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण रखता, और पहले कभी किसी जन्म में ये पहले कभी वसुदेव के पुत्र होकर के जन्म लिया है, लोग इसे वसुदेव कहा करते। तो नंद महाराज जी ने यशोदा मैया ने ये सोचा, पहले किसी जन्म में वसुदेव के पुत्र होकर के जन्म लिया होगा इसलिए वासुदेव कहा है, पर तो ये जन्म में तो ये हमारे बालक है, और उनके माधुर्य भाव में कोई भी दाग नहीं आया, और उनका माधुर्य प्रेम में कोई संकोच नहीं आया, कभी भी कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, चाहे वो ऐश्वर्य दिखा दे माँ यशोदा को विराट विश्व ब्रह्मांड दिखला दी, परंतु माँ ने क्या सोचा कि अरे ये कोई जादू है क्या, ये कोई माया है, कोई सपना देख रही है क्या, भूल भ्रांति है, ये क्या देख रही है, ये कोई हवा लग गई या नजर लग गया, कोई भूत आ गया कृष्ण के शरीर में आविष्ट हो गए, इसलिए यशोदा मैया जल्दी से जल्दी अब कृष्ण कन्हैया को गोदी में लेकर के दूध पिलाती है कि दूध पीने से बालक सही रहे, फिर भी उनका मन नहीं मानता है, गोबर गोमूत्र से स्नान करा रही है, मोर पंख से झाड़ रही है, और अच्छा कवच पाठ कर रही है, उनका माधुर्य प्रेम इस प्रकार बढ़ता चला रहा है। यशोदा मैया का औलाद वात्सल्य प्रेम है, वो प्रेम समुद्र जैसा, कृष्ण का ऐश्वर्य उस समुद्र में माधुर्य वात्सल्य प्रेम सिंधु में एक तिनके की भांति है, ऐसे अगाध वात्सल्य प्रेम जहां पर प्रगाढ़ ममता है, ऐसे ममता के द्वारा अपने स्नेह प्रति के द्वारा कृष्ण को बांध लिया, कृष्ण जहां उनके अधीन बने हुए और उनके परछाई की तरह हमेशा चलते फिरते हैं, जबकि ब्रज की गोपियां आकर के कहती हैं कि कन्हैया हम अपने घर में अच्छे अच्छे मक्खन निकाले हैं, घर में लड्डू मिठाइयां बनाती हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं, और खीर है मलाई है, ये सब घर में आकर के करे खाना, तो मेरे घर में आना, इस प्रकार गोपियां सब कहती रहती हैं। उनके कहने पर कृष्ण क्या करते, बच्चों को साथ में लेकर के चलते घर घर में जाकर के मक्खन खाते, जब गोपियां देने लगती थाल में ला करके दिया, बोले हमें भूख नहीं है, हमारा पेट खुला हुआ है, मैया ने हमें खूब खिला दिया, मैं नहीं खाऊंगा, खाए नहीं किसी भी प्रकार लेने पर भी लेंगे नहीं खाएंगे नहीं, और कहीं इधर उधर हुई तो बस इतने में कमरे के अंदर घुस करके कहीं पर मक्खन का बर्तन रखा हुआ है उनको सारा पता है, कोई खाली बर्तन दूसरा बर्तन तो छुएगा नहीं, मक्खन का ही बर्तन उठा के लाएगा बाहर ला करके अब आंगन में अब फेंकने लग जाएगा, बंदरों को खिलाने लगेगा, और कहेंगे कि और खाओ तुम्हारे लिए हमने मक्खन चलाया, अरे खाओ पेट भर करके, ऐसे बंदरों को खिलाएंगे, और खाने का तो नाम नहीं, थोड़ा सा मुंह में लिया और यदि नहीं खाया बंदरों ने तो उस समय बर्तन लेकर उसके सामने तोड़ दिया। तो ऐसे बर्तन तोड़ते, कभी मक्खन चुराते, कभी कुछ करते, कभी कुछ, और रोजाना ऐसे करते रहे। किसी के घर में कोई बालक जाकर कोई उत्पात मचा के आ जाए तो कोई मैया सहन कर लेगी? कोई भी सहन नहीं करेगी, दांत फटकार लगाएगी, शासन करेगी, शिकायत करेगी। परंतु ये गोपियां ऐसी हैं, चाहे कितना ही यशोदा मैया से उलारा दे, शिकायत करे, रोज दिन मक्खन का बर्तन सजा करके रख देगी कि कृष्ण कब आएंगे और कब खाएंगे। तो इन लोगों का कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है, ममता है कि कृष्ण मेरे बालक, मेरा ही जैसे मेरे बालक। इस प्रकार सभी प्रजावासियों का कृष्ण के प्रति एक प्राण, एक हृदय, एक मन, प्राण सर्वस्व जैसे मानते, कभी भी वे रुकती नहीं, उसमें हंसती हैं, आनंदित होती हैं, खुशियां मनाती हैं। कृष्ण ने हमारे घर में आया, मक्खन खाया, इस प्रकार रोज दिन मक्खन चलाते, उस आनंद को लुभाने के लिए यशोदा मैया को आकर के शिकायत करती। यशोदा मैया का कान तो भर गया कि ये क्या बात है कि हमारा बालक अभी से चोरी करना सीख गया और ऐसे ऐसे मक्खन चुराता है। तो इस प्रकार के मक्खन चुराने वाले कृष्ण कन्हैया को देखते हुए यशोदा मैया को समझ नहीं पाती, मेरा बालक तो मेरे घर में है, परछाई के भांति हमेशा चलते फिरते हैं। तो ऐसी स्थिति में और हम क्या करें? परंतु अपने हाथ से कुछ मक्खन निकाल करके खिलाए वो भी नहीं हो पाता, घर की दास दासियां सभी मक्खन निकालती हैं। एक दिन यशोदा मैया को मौका मिल गया, जबकि उन्होंने मन किया कि दीपावली का दिन आ रहा है और कल ही दीपावली है, तो घर में काम करने वाली सभी महिलाओं को और लड़कियों को सबके घरों में भेज दिया, बोले जाओ घर में दीपावली मना देगा और इंद्रजात की पूजा के लिए सारे तैयारी कर ले। ये सारी बातें कह करके उनको भेज दिया और स्वयं अपने हाथ से दूध काट करके दही जमा करके उन्होंने मक्खन निकालने के लिए दही जमा रखी। वो रात में उठ करके जब मक्खन निकालने लगे तब उस समय भागवत में वर्णन होता है कि यशोदा मैया रेशमी वस्त्र को पहनी हुई और कृष्ण के चिंतन में और उनके बाल लीला और माधुरी को चिंतन करते हुए भाव में विभोर है, जो वात्सल स्नेह से भरी हुई है, वात्सल रस की मूर्ति यशोदा मैया नदीवंदन कर रही है। ऐसे समय में बाल गोपाल वहां उठ के आए, घूमते हुए वहां देखा कि यशोदा मैया नदीवंदन कर रही है, उनके मंथन की रस्सी को एक हाथ से पकड़ ली, दूसरे हाथ से मैया का कपड़ा पकड़ लिया। जैसे ही देखने लगा तो यशोदा मैया वात्सल्य भाव में तो भरी हुई थी, गोदी में ले करके उन्हें दूध पिलाने लगी। परंतु अगर प्रेम समुद्र में खीर समुद्र भी मिला हुआ है, जहाँ दूध की कमी नहीं और चूल्हे में रखी हुई दूध अब उबन उबन करके गिरने लगा, तो यशोदा मैया ने कृष्ण कन्हैया को उठा करके बैठा दी और दूध उतारने को चली गई। उस समय अब दूध को घना करके औटा करके घना करके फिर आएंगे उसमें समय लग गया। कृष्ण कन्हैया ने आंख मलते हुए आंखों से आंसू बहाते हुए कि मैया ने दूध नहीं पिलाया और देखा कि सामने एक लोढ़ा जो शिला पुत्र लोढ़ा पड़ा हुआ है उसे उठा करके दही के बर्तन में नीचे से मार दू, मारते ही सारा दही फैल गया, कमरे में दही का समुद्र बन गया, उसी में नाचते रहे। अब बालक तो देखते ही नाचते हैं, तो नाचते नाचते बड़ा आनंद आया और चलते फिरते हुए पैर का छोटा छोटा छाप पड़ रहा है, खूब घूम घूम करके आ करके पैर लगाता है फिर छाप देता है। तो ऐसे करते हुए दूसरे कमरे में पहुंच गए जहां पर मक्खन रखे हुए हैं बर्तनों में। अब यशोदा मैया ने ऊपर अब सिक्के में सब दही के बर्तन ये मक्खन के सारे बर्तन ऊपर उठा रखे और उन्होंने क्या किया, बाल गोपाल ने उदखल को खींच करके उसके ऊपर चढ़ करके ये उतार करके उसमें से मक्खन खाने लगे और फेंकने लगे, जबकि कौए बंदर सब अंदर आ गए, वे भी खा रहे वो भी तो देख रहे हैं कि रोज दिन कृष्ण कब हमें मक्खन खिलाएंगे, उनके साथ में अब संगी बन गए, साथी बन गए। ऐसी स्थिति में यशोदा मैया आ करके देखने लगी, अरे सारा तो ये फैल गया, तो उस समय सिर पर हाथ पड़ गया। ऐसी स्थिति में लेकिन इस दुष्ट का काम है, किसने किया? इस दुष्ट ने ही किया है। रोज दिन गोपियां शिकायत करती है, दूसरों के घर में बर्तन तोड़ता है, दही मक्खन लुटाता है, फेंकता है, कुछ न कुछ उधम मचा के आता है। आज अपने घर में उधम मचाते हुए देखा जा रहा है, तो इसको अभी पकड़ना होगा, छोड़ना नहीं। एक पतली सी छड़िया लेकर के यशोदा मैया जब की उस मक्खन वाले कमरे के दरवाजे में आ गई, जैसे आई तो इतने में कृष्ण वहां से उतर करके डर के हमारे भागने लगे। बोले अब कहां भाग के हो, अब तो हम तुम्हें पकड़ करके छोड़ेंगे। यशोदा मैया भी दौड़ने लगी, जबकि दौड़ती हुई जिनको आज तक कंस, जरासंध, कालयवन, बड़े बड़े दैत्यदार, बड़े बड़े योगसिद्ध महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष दौड़ लगाते रहे कि कहीं हम उनको पकड़ लें, आज तक किसी ने पकड़ नहीं सका। कालयवन 3 करोड़ यवन सेना लेकर के दौड़ते रह गए, यही पकड़ा पकड़ा पकड़ा, बस पकड़ नहीं पाए। जरासंध भी 18 करोड़ यानी 50 लाख सैनिक के साथ में दौड़ रहे हैं कि कम से कम पकड़ ले, पकड़ नहीं सके। तो ऐसे बाल गोपाल अब यशोदा मैया के डर से भाग रहे हैं, और यशोदा मैया कह रही है कि आज तुम्हें पकड़ूंगी। दौड़ती रही, फूल भी गिरते जा रहे हैं, यशोदा मैया शरीर से भारी होने के कारण दौड़ रही है, बालक तो आगे आगे दौड़ता जा रहा है। जेवी लठिया उठाई, इतने में कृष्ण डर गए, कहीं भैया मार न दे, और हाथ से पकड़ लिया। ऐसे पर ब्रह्म को कौन पकड़ सकता है, बांध सकता है? नायम सुखाप भगवान देहि नाम गोपिका सुतस, ज्ञानी नाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मतामी हर। बोले कि एक बड़े बड़े ज्ञानी आत्मभूत योगी, ये लोग कभी भगवान को बांध नहीं सके। बांधा किसने? भक्ति, भक्ति वाले भक्तों ने भगवान को बांधा। जिनके हृदय में भक्ति है, भक्ति के द्वारा भगवान बांधे बने जाते। इसलिए भागवत जी ने कहा है, प्रणय रसनया धृतांग्रि पद्मो विश्यति न हृदयम यस्य साक्षात् हरिनित्य वचे नाह प्रणय रसनया धृतांग्रि पद्मो। भक्त भगवान को बांध लेते और उनके बंधन में आ जाते हैं। भक्तों के हृदय को छोड़कर भगवान कभी बाहर नहीं जाते। क्यों? भगवान श्री कृष्ण जो है तो त्रिभंग ललित है, केड़े हैं ना, कोई बोतल है, कोई वर्म है, जार है, कांच का बर्तन है, तो उसमें कोई सीधा है और उसमें कोई केड़ा चीज उसको जो जोर से फंसा दिया जाए तो कितना ही उल्टा करके झाड़े तो भी निकलेगा नहीं, कैसे भी झाड़ते रहे उसको निकलेगा ही नहीं। तो कृष्ण तो टेढ़े हैं, पर भक्तों का हृदय कैसा होता है? कामना वासना से रहती, सरल निष्कपट हृदय होता है। ऐसे सरल निष्कपट हृदय में जब श्याम सुंदर प्रवेश कर जाए ना, जो कभी निकलना नहीं जानते हैं, इसलिए भक्तों के हृदय में वो टेढ़े बन करके फंस गए हैं। और वहीं पर भक्तों ने क्या किया? प्रणय रसनया धृतांग्रि पद्मो, प्रणय प्रेम प्रीति रूपी रस्सी के द्वारा बांध लेते हैं। ऐसे उनके चरण कमल को बांध लिया, अब निकल नहीं सकते। यशोदा मैया ने तो कृष्ण कन्हैया को पकड़ लिया। कथा तो बहुत लंबी है, बहुत सारी है, परंतु तो हम संक्षेप में ही कहें, क्योंकि हम गुरु जी के सामने बैठे हैं, हम तो उनके मुखारविंद से सुनने को प्रयासी हैं। इसलिए कि यशोदा मैया उनको लेकर के चली, बोले लठिया से बोले मारो, बड़ा शैतान हो गया, अब इसे चोरी करना सीख गया। कृष्ण कन्हैया रोते हुए बोले कि नहीं भैया, मैंने चोरी नहीं की, मेरे वंश में कोई चोर नहीं है, और मैंने चोरी नहीं की तो मक्खन का बर्तन कैसे तोड़ा, कैसे मक्खन लूटा, ऐसे रोज दिन दूसरों के घर में करता है, आज तुम्हें बांध के रखूंगी क्या? के ले गई, ले जाकर के उसी कमरे में जहां मक्खन फेंका था, लुटाया था, वहीं पर बांधने के लिए माथे की रेशम की डोरी खोली और जैसे ही घुमाया तो दो अंगुल की कमी, फिर से रस्सी लाई, ला करके गांड जोड़ा तो दो अंगुल की कमी, ऐसे रस्सियों का ढेर लगने लगा। अब गोपियां सब आ गई, दूसरी दूसरी माताएं आकर के बोली, अरे जिसके ललाट में बंधन नहीं उसको कोई बांध सकता है, थोड़ा सा मक्खन लुटा दिया, फेंक दिया, बर्तन तोड़ दिया तो हुआ क्या, छोड़ दो। जसोदा बोलिया छोड़ने को तैयार है, बोले नहीं आज बांधूंगी, यदि नहीं बांधू तो सारी दुनिया मेरी गाली सुनाएगी, मुझे गाली देगी तो हंसी उड़ाएगी, इसलिए मुझे बांधना होगा। बोले अच्छी बात है, हम सारे रस्सियों का ढेर लगा। तो उन लोगों ने भी रस्सियों सारे रस्सी ला करके वहां ढेर कर दिया। यशोदा मैया एक एक करके जोड़ती जा रही है, अभी सुबह से दोपहर तक यानी काफी दूर काफी समय तक जोड़ती जा रही है, जोड़ते जोड़ते ढेर लग गया, फिर भी दो अंगुल की कमी। ये दो अंगुल की कमी क्या है? भक्तों की साधना और भगवान की कृपा। जब तक हमारी साधना नहीं हो तब तक हम उनको पा नहीं सकते। हमारी साधना में अभी अभी आपने सुना है कि श्रद्धा भक्ति का पहला फाउंडेशन श्रद्धा है, कि श्रद्धा जितनी मजबूत होगी उतना ही भक्ति में प्रवेश होगा। कृष्ण का भजन करने से हमारे जीवन का समस्त कर्तव्य पूरा हो जाएगा, ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाए, इसको श्रद्धा कही जाती है। इसलिए भगवान की भक्ति करें कि हमारी श्रद्धा पक्की हो, चाहे हम मर जाए मिट जाए फिर भी हम भजन नहीं छोड़ेंगे, कृष्ण की हम भक्ति करेंगे। इस प्रकार दृढ़ विश्वास लेकर के जो कोई व्यक्ति साधना करता है, गुरु की सेवा करता है और साधन पथ में अग्रसर है, भक्ति में प्रवेश करता है, ऐसे भक्तों के हृदय में प्रेम उदय होता है, ममता होती है, तब भगवान को बांध सकते हैं। इसलिए हमें ऐसी साधना होनी चाहिए। दूसरी ओर भगवान की कृपा जब तक नहीं होती तब तक उनको कैसे बांधेंगे? और कृष्ण ने तो बांधना नहीं चाहा, उनके मन में इच्छा नहीं हो रही है क्योंकि लीला नहीं कर पाएंगे, और ऐश्वर्य शक्ति ने उनको ऐसे कर दिया कि सारी रस्सियों का ढेर लग गया फिर भी बंधन नहीं हो रहा है, गांठ नहीं लग रहा है। जब यशोदा मैया पसीने से तर हो मन में बड़ा विस्मय हो गया, बड़े आश्चर्य में डूब गई, बात क्या है इतनी रस्सी और पतला सा कमर, छोटा सा बालक ढाई बरस का, अरे इसको बांध नहीं पा रही। बांधने की देवता निश्चयता देख करके जब कृष्ण का हृदय करुणा से द्रवित हो गया तो उस समय ऐश्वर्य शक्ति दूर हट गई और साथ ही साथ लीला शक्ति सामने आई। जीव के देव छोटा सा बालक यशोदा मैया ने सारी रस्सी छोड़ करके पहली वाली रस्सी से बांधा। तो इस प्रकार हम भगवान को पा सकते हैं, ऐसे भक्ति हो हमारे अंदर, स्नेह प्रति ममता हो, निष्कपट हृदय हो, अपनी चाह को छोड़ करके उनकी सेवा के लिए हमारा जीवन समर्पित हो, तब हम उनको पा सकते हैं, ऐसे अनंत भक्ति होती है। मैं इतना कह करके अपना वक्तव्य मैं नहीं रखता हूँ। अरे गुरु जी, अरे कृष्णा से यही प्रार्थना।
अभी श्रीमान तीर्थ महाराज जी ने बतलाया, यशोदा जी दधि मंथन कर रही और कृष्ण कैसे उनकी गोदी में आए, फिर उसी समय में दूध उबल रहा था और कृष्ण को गोदी से उतार करके रखा, बैठो। जिस कृष्ण को पुतना 60,000 हाथियों के बल वाली, अरे छोड़ो छोड़ो, बहुत चेष्टा करके हटाने की चेष्टा नहीं की, और यशोदा मैया ने एक ही हाथ से उसको बैठ लिया, तो यशोदा मैया का कितना बल है ये समझो। दूसरा ब्रह्मांड में तो ऐसा नहीं है जो ऐसा कर सके, बैठ यहां नहीं कर सकता, किंतु जो सोदा मैया जी को इतना बल है। दूसरी बात, कृष्ण दूध पी रहे थे, पेट भरा नहीं था और भी पीना चाहते थे। यशोदा जी के स्तन में इतना दूध है कि विश्व ब्रह्मांड के आखिर समुद्र उससे निकल गया, निकला है। जो यशोदा मैया का स्तन का दूध कभी भी समाप्त नहीं होगा, और कृष्ण के पेट में ब्रह्मांड है, उनका पेट भी नहीं भरेगा। तो कृष्ण खाते पीते रहेंगे दूध और उनका पेट भी नहीं भरा, तो लगातार चलता रहेगा। दूध आग के ऊपर में दधि के दूध के भांड से वो दूध उफन करके गिर रहा है। उस जीवन से लाभ क्या है यदि हम कृष्ण की सेवा में नहीं लग सके? जो यशोदा मैया का दूध खत्म नहीं होगा, इनका पीना खत्म नहीं होगा, इसलिए हम जल मरेंगे। भक्त ऐसा ही सोचता है, यदि इस जीवन से भगवान की सेवा नहीं हुई, भक्ति नहीं हुई, तो ये जीवन बेकार है। इसलिए दूध उफन करके के गिर रहा। मैया यशोदा जी ने कहा, नहीं तुम घबराओ, अपना दूध पिलाना बंद कर दिया, हमारे दूध से छेना, दधि, मक्खन ये सब तो नहीं हो सकता, तुम्हारे दूध से ही होगा। अतएव मैं अभी तुम्हारी रक्षा करके तुमको सेवा में लगाएगी। ये गुरु बड़े दयालु होते हैं, ये गुरु का कार्य है। यशोदा जी एक तरह से गुरु है, गुरु यही करते हैं। जीव संसार के विषयों में फंसा रहता है और कोई न कोई बहाना लगा करके जीवों को भगवान की तरफ में लगा देता है। ये गुरु की बड़ी कृपा है। हम लोगों को यहाँ आने की क्या जरूरत है? जरूर रोटी का कुछ प्रश्न होगा, रोटी नहीं मिलती होगी, इसलिए यहाँ आए कि पैसा की कमी थी घर में, इसलिए कुछ भीख मांगने के लिए आप लोगों से हम लोग आए। किस लिए? बुलाया नहीं तो भी आए, यही संतों का धर्म है। हम लोग अनादि काल से जीवन में आवागमन में पड़ रहे हैं, सुकर कुकर गधे हुए फिर होंगे, इसलिए दया करके भगवान की कथा सुना करके हरि नाम दे करके बस उद्धार के पथ पर लगा देते हैं, जिससे कि जीवन सार्थक हो जाए। इसलिए ये यशोदा मैया का ही कार्य है। कृष्ण को बांधने चली, अपने पहले केश में बंधन की या रेशम की डोरी होती है अढ़ाई हाथ की। कृष्ण की कमर तो केवल 12 अंगुल की है और 12 अंगुली की करधनी कमर में लपटी हुई है, बंधी हुई है, और यशोदा मैया की अढ़ाई हाथ की रेशम की डोरी पूरी नहीं हुई एक बार भी। उनको बांधना था कृष्ण की कमर से लगा करके ओखल तक में बांधना था, तो कृष्ण की कमर ही नहीं पूरी हुई तो ओखल में क्या बांधेंगी? सखियों से कहा, रस्सी ले आओ। अपने घर की सारी रस्सी जोड़ती गई, बांधती गई, फिर 2 अंगुल कम, फिर कहा अपने अपने घरों से लाओ। अपने घरों से लाई और एक एक करके जोड़ती गई, रस्सी लंबी होती गई, किंतु न जाने क्या भगवान की माया या क्या, 2 अंगुल फिर भी कम पड़ी। ये कम क्यों पड़ी इसका इन्होंने बतलाया। कृष्ण की इच्छा हुई, कृष्ण तो स्वयं भगवान है, उनकी इच्छा शक्ति भीतर रहती है, ऐश्वर्य शक्ति। और कृष्ण की जो ही इच्छा होती है उनकी इच्छा को पूर्ण करती है। कृष्ण ने इच्छा की जो मैया यशोदा हमें न बांधे, यदि बांध देगी तो अपने सखाओं के साथ में मैं खेल नहीं सकूंगा। और गायें चरने के लिए नहीं जा रही हैं और बछड़े भी दूध नहीं पी रहे हैं मेरे लिए, जाएंगे तब गायें दूध देगी तो पिएंगे। इन सब कारणों से बन ही मन में सोचा मैया को हमको न बांधे। इसलिए ऐश्वर्य शक्ति ऐसी विचित्र लीला की, रस्सी लंबी होती गई, कृष्ण की कमर ज्यों की त्यों, किंतु प्रत्येक बार दो अंगुल ही कम पड़ी। दो अंगुल किस लिए? भक्त की साधना का परिश्रम। जो सदा मैया बांध रही हैं उनकी कमर बंद नहीं रही है, प्रतिज्ञा की आज नहीं सारा दिन नहीं सारा जीवन बांधती रहूंगी, किंतु बांध करके ही छोड़ेंगी प्रतिज्ञा की। और बांध नहीं लगी, परिश्रम से थक करके पसीने से तरबर हो गई, किंतु बांधूंगी। यद्यपि उनकी सहेलियां कह रही हैं, अरे सखी इसके ललाट में बंधन नहीं है, मत बांधो नहीं बंधेगा, किंतु वो कह रहे हैं हम तो बांध करके रहेंगी। मुख पीला हो गया, लज्जा से भर गया, मैं अपने बेटे को नहीं बांध सकती, हे भगवान हे नारायण मेरी लज्जा रखो। नारायण है कौन? वही कृष्ण ही तो। कृष्ण ने सोचा जी मेरी मैया परिश्रम से क्लांत हो गई है, पसीने उसके सब निकल रहे हैं, केश के बंधन खुल गए हैं, फूल जितने थे केश में लगे हुए सब गिर गए, अब बड़ी लज्जित हो रही है। दया आई, और दया आने से क्या हुआ, उनकी जो ऐश्वर्य शक्ति जो थी जो बांधने नहीं दे रही थी, वह कृपा शक्ति जो ही आई, कृपा शक्ति भगवान की समस्त शक्तियों से श्रेष्ठ है, या बात्सल्य कहो या कृपा शक्ति कहो, समस्त जितनी की शक्तियां हैं उनसे ये सबसे श्रेष्ठ। जहां वो कृपा शक्ति आई ऐश्वर्य शक्ति वहां से निकल करके भाग गई, और कृष्ण अधिक रस्सी की जरूरत नहीं पड़ी, वही जूड़ा बांधने वाली रस्सी थी, बस उसी से कृष्ण को बांधा, सामने से बांध करके एक फेरा लगा करके और उखल के पीछे बांधे जी, कृष्ण का हाथ न जाए जो खोल सके, बांध दिया। बांध करके सखा लोग उतने में आ गए, देखो इसको देखते रहना मैं अपने घर के काम में जा रही हूं, किंतु गई की गई, किंतु मन कहां रहा, कृष्ण में ही अटका रहा, उसी की चिंता कर रही है, गई अब किसी काम में मन नहीं लग रहा। इधर सब सखा कहते हैं कि मैं खोल दूं, खोलने गया वो नहीं खोल सका, कहते यार हट हम खुलेंगे, मधुमंगल का जब मैं खोलूंगा, सब इधर उधर कहते किसी से नहीं खुला। बात्सल्य रस का बंधन, बात्सल्य रस से ही अथवा मधुर रस से खुल सकता है, गोपियां खोल सकती हैं, अथवा नंद बाबा खोल सकते हैं, यशोदा जी की गांठ को खोलना सहज नहीं है, किसी से नहीं खुल सकती, इसलिए सखाओं से तो खुल नहीं सकी। और इतने में बलदेव बाहर गए थे उपानंद जी के घर मैया के साथ, वो आए कृष्ण को बंधे हुए देखा, देख करके बड़े क्रोधित हो गए, अरे इसको कौन बांधा, कोई भी होगा उसे डंडे देंगे। किसी ने कहा जी उनके कान में मैया ने बांधा है, बस उनकी सारी शक्ति हवा निकल गई, मैया का नाम सुनते ही ठंडे पड़ गए। इतने में कृष्ण ने कहा, सखाओं ने, हम लोग ठेल रहे हैं उखल को और तुम खींचो और हम घर से बाहर जाकर के खेलेंगे। कृष्ण को याद आई सत्याभिधातुं नन्य भक्त भाषितम। नारद जी ने अभिशाप दिया था नलकुबर मनग्रेव कुबेर के पुत्रों को, जाओ वृक्ष हो जाओ, उदंड होकर के नग्न होकर के स्त्रियों के साथ में जल खेली कर रहे थे, जाओ वृक्ष हो जाओ, लज्जा नहीं है तुम लोगों को, तो वृक्ष हो गए थे। कब उद्धार होगा? तो उन्होंने बतलाया था जी कृष्ण जन्म लेंगे द्वापर के अंत में, उनके स्पर्श से तुम लोग ठीक हो जाओगे, इसलिए खींच करके उद्धार लिए जा रहे हैं। क्या हुआ इसके बाद में माधव महाराज जी कुछ बतलाइए।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सखा लोग युगल को खेल रहे हैं और कृष्ण खेच रहे हैं, क्यों? उन लोगों का डर है हम घर में खेल नहीं सकते हैं, माई आएगी तो हम लोग डांटेगी, तो चलो कन्हा हम बाहर चलते हैं, मैं तो घर में काम कर रही है, देखेंगे नहीं, हम मजे से खेलेंगे। इधर कृष्ण खींच रहे हैं और सखा लोग खेल रहे हैं और कृष्ण को सखा लोग चिढ़ा रहे हैं, क्या कहना और चिढ़ाओगे मक्खन, दूसरे घर पे जाते हो मटकी फोड़ देते हो और बोलते हैं मैं कुछ नहीं करता नहीं जानता, अब देखो तो क्या मजा है और चिढ़ाओगे मक्खन। कृष्ण को सखा लोग खिजा रहे हैं, कृष्ण हंस रहे हैं और खेच रहे हैं, लोग खेल रहे हैं। ऐसे करते करते जो नारद ऋषि ने नलकुबर मुनिद्वीप को अभिशाप दिया था, वो दोनों विशाल अर्जुन के रूप में, अर्जुन पेड़ के रूप में जन्म लिया था। आते आते वो उखल आड़ होकर के अटक गया, न सखा खेल सके न कृष्ण अकेला खेच सके। कृष्ण बता देखो तुम लोग हट जाओ, मैं इसको खींचता हूं, क्यों? कृष्ण को याद आया अरे भक्तन इनको अभिशाप देने का उद्धार करना है, कृष्ण अपने प्रतिज्ञा को छोड़ देते हैं, छोड़ करके भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। जैसे महाभारत युद्ध में देखा कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं युद्ध में अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, उधर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की हरि से अस्त्र कहा अपने को संकल्प पुत्र कहा, अगर मैं अपने बाप शंकर का पुत्र हूँ बाप का बेटा हूँ तो भगवान से जरूर अस्त्र ग्रहण कराऊंगा। जब विश्व पितामह युद्ध करते हुए इतना पान का बुछार कर रहे हैं, अर्जुन का छक्का छुड़ा रहे हैं, कृष्ण को सहन नहीं हुआ, अरे मेरे भक्तों का ऐसे अवस्था कर रहे हैं, वो तो रथ से कूद पड़े, कूद करके रथ के पहिया लेकर के उसको दौड़े उसको मारने के लिए। विश्वपिता हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, ओ प्रभु अब अपने भक्त की आन रखने के लिए ये अपने प्रतिज्ञा छोड़कर के मेरे दौड़ पड़े। ऐसे ही भगवान सब समय भक्त की प्रतिज्ञा को ही सत्य करते हैं, भले अपने प्रतिज्ञा झूठा हो जाए कोई परवाह नहीं। इसलिए कृष्ण को याद आया इसको तब उद्धार करना है। हुआ क्या, कृष्ण जोर से खींचा, खींचते ही जोर से दोनों पेड़ दो साइड धाम कर गिर पड़े, प्रचंड शब्द हुआ, जैसे माना कोई आंधी आ गई चक्रवात आ गई, कहां से क्या शब्द हुआ कुछ पता नहीं चला। और जब तक सब लोग अपने घर में काम करते हैं सबका मन सब समय क्या है कृष्ण में बसा हुआ है, गोपियां घर में काम करती हैं, लेपती हैं, पोतती हैं, गोदहन करती हैं, करती क्या है, गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती। यही शब्द सुना सब लोग अपने को ध्यान नहीं दिया, मेरा बच्चा क्या हुआ ये ध्यान नहीं दिया, ये कन्हा का क्या हो गया, सब शब्द सुनकर तो उससे दौड़े। और नंद बाबा जमुना पुलिन में गोचारण देखने के लिए गए, वो भी उधर से दौड़ करके आए, दशदमा दौड़ के आई, रोहिणीमा दौड़ के सब आए, जब सब दूर से देख करके तो ठिठुर गई, लकड़ी जैसी हो गई। नंद बाबा आकर के कृष्ण को सामने आया, धीरे 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 गांठ को खोला, खोल करके गोदी में लिया। जब कृष्ण सखा के साथ थे, हंस रहे थे, सखाओं हंसा रहे थे, जब बाबा आए आपको देख करके आंसू बंद न हो, मानो दोनों आंखों से गंगा जमुना बहने लग गई। यह छोटे बच्चे का ऐसे नियम है कि जब कोई अपने आपस में लड़ाई हो जाए कुछ नहीं होगा, माँ को बाप को देखकर रोना शुरू कर देता है। भले कृष्ण भगवान हो, नरवर लीला कर रहे हैं ना, इसलिए बाबा को देखकर से बहुत रोने लगे। और बाबा को गोदी में ले लिया, लेकर के जिनकी गुड़धानी था, लड्डू था, उसको दिया। कृष्ण लड्डू तो हाथ में ले लिया, खा नहीं पा रहे, सबक शिशा शिशा करके रो रहे हैं। फिर बलदेव प्रमुख और कृष्ण को दोनों को लेकर के
पूछा किसने बांधा,
रानो ने पूछा बांधा किसने, मैया ने, खुला किसने, बाबा ने। तो नंदन को मैया को मारूं, ऐसे हाथ उठाया, जसवंत थी भी नहीं, लेकिन क्या हुआ, कृष्ण बाबा को हाथ पकड़ लिया, मैया को नहीं मारना है, क्योंकि छोटा बच्चा क्या करते हैं, सब सब माँ मारने पर भी डांटने पर भी बाबा के पास नहीं जाएगा, माया के पास ही जाएगा। एक समय नंदोबा जसनोबा दोनों बैठे हुए हैं, बैठी हुई हैं, अब दोनों हाथ बढ़ाया, कृष्ण की सुद्रा आता है, कृष्ण दौड़ते हुए आए सामने आकर के और दिशा चेंज कर माँ के गोद में बैठ गए। ऐसे बच्चे का नियम है, क्योंकि माँ का स्तन पान करता है, माँ के गर्भ से जन्म लिया, ऐसे नंदोबा हाथ पकड़ लिया नहीं। अब नंदोबा अब दूध धो करके, कोई बर्तन नहीं, कृष्ण बोला दोनों मुख खोला, डायरेक्ट मुख में दूध धो करके पिला दिया और उसे मिश्री दे दिया, भरपेट कृष्ण बोला ने खा लिया। अब खाने के बाद अब रोहिणी माँ और नंद बाबा के ये बड़े भाई उपानंद, अभिनंद और छोटे भाई सुनंद नंदन सब लोग जुट गए। नंद बाबा बैठक में बैठक खाने में बैठे हुए थे, उपानंद की पत्नी तुंगी आई, रोहिणी माई आई, आके बलदेव को जा काना को पकड़ के ला। जीव कृष्ण को पकड़ने के लिए गया, ऐसे दाऊ तो उनका नाम बलदेव है, बल के अधिष्ठान की देवता है। आज हुआ क्या, जीव पकड़ने गए, कृष्ण ऐसे धक्का दिया, बलदेव कहाँ छिटक गए, अंदर उठ करके ऐसे करके देख रहे, आदि आज मुझे पछाड़ दिया, बात क्या है। उपानंद की पत्नी तुंगी पूछ रही है, कान्हा तू आएगा नहीं, मतलब नहीं आऊंगा, खेलेगा किसके साथ, बाबा के साथ, ताऊ के साथ, खाएगा क्या, बाबा धारस में दूध पिला देंगे और मिश्री दे देंगे, सोएगा किसके साथ, बाबा के साथ, अगर तेरी मैया ऐसे हो जाए तो, मतलब जय सियाराम हो जाए तो। जे सुना कृष्ण को रहा नहीं गया, शिशक शिशक करके रोने लगे। अब सब ब्रज रो रहे हैं, सब ब्रजवासी रो रहे हैं,
मैया मैया
भी रो रही है, सब रो रहे हैं,
मैया मैया करके हाथ में
है, करके हाथ ऐसे पसार दिया। तो तुंगी और रोहिणी मैया को लेकर के माँ जसोदा की गोदी में जेहर दे दिया। अब जसोदा को मानो जैसे बांध में पानी बांधा हुआ हो, बांध फट जाए तो पानी को रोकना मुश्किल हो जाता है। जसोदा अब तक रो नहीं रही थी, जिन किसी को गोदी में मिल गया, इतनी रोई इतनी रोई, इतने में जब रोहिणी मैया तुरंत जाकर के कुछ रस्सी पकड़ा और सबको खिलाया। ऐसे कृष्ण इतने सुंदर लीला करते हैं, इस लीला क्या पढ़ते हैं, इस भागवत में कहा गया ग्रंथ में कि अनुप्राय भक्ता नाम मानुषम देमाश्रित भजते तादृशि क्रीड़ा जासुत्वात् करो भवे। भगवान जैसे लीला करते हैं, लीला को श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, मनन करेंगे, गुरु वैष्णव के मुख सुने हुए कथा को दूसरे सुनाएंगे, सभी का कल्याण होगा और इनका भव सागर से बड़ा पार होकर के भगवत धाम में जाकर के सेवा प्राप्ति होगी। इसे भगवान से लीला करते हैं, गोदाम बंधन लीला की जय, जसोदा मैया की जय, नंद बाबा की जय, रोहिणी मैया की जय, दाऊ भैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, तुलसी गुरु महाराज की जय, गौर प्रभानंद
मैं मट के धारी उतारो रे गिरधारी, अरे मेरे सिर के मट के धारी उतारो रे गिरधारी, अरे मेरे सिर के मट के धारी उतारो रे गिरधारी, अरे मेरे सिर के मट के I'm